नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी पर चर्चा करने वाले हैं और इसमें भी हमारा ध्यान एक खास अध्याय पर रहेगा, नारी कामधेनु है कल्पवृक्ष है
जी।
तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी नारी के इस शक्तिशाली पोषण करने वाले रूप को कैसे देखती हैं, जैसा उन्होंने इस अध्याय में बताया है।
बिल्कुल, ये अध्याय असल में नारी को एक सनातन शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा से रही है। वंदनीय माता जी ने तो इसकी तुलना उस नींव के पत्थर से की है जो इतने बड़े भवन का भार चुपचाप सह रहती है,
है ना?
हाँ,
ये बात दिलचस्प है। और ये भी कि वो नारी को सिर्फ घर परिवार तक ही नहीं देखती, उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया है, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी।
जी हाँ, महान विदुषियां जिन्होंने धर्म और तत्व ज्ञान को कितना कुछ दिया,
और मल्लीनाथ, संघमित्रा जिन्होंने संस्कृति फैलाई।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि नारी का प्रभाव तो हर क्षेत्र में रहा है। वंदनीय माता जी उन्हें परम वैष्णवी शक्ति कहती हैं, खास तौर पर परिवार और समाज के पोषण के संदर्भ में।
परम वैष्णवी शक्ति?
हाँ, जैसे विष्णु पालन करते हैं तो उनके अनुसार त्याग है, तप है, सहन शक्ति है, सक्रियता और एक तरह की तेजस्विता, ये गुण नारी में बहुत स्वाभाविक रूप से होते हैं।
अच्छा, तो फिर ये कामधेनु और कल्पवृक्ष वाली उपमा क्यों, इसका क्या मतलब है यहाँ?
हाँ, ये बहुत गहरा है। देखिए, कामधेनु और कल्पवृक्ष ये दोनों क्या है, ये पोषण, इच्छा पूर्ति और आश्रय के प्रतीक है हमारी कथाओं में। तो वंदनीय माता जी कहती हैं कि नारी ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से भौतिक इच्छाओं को एक दिशा दी है, प्रेम की दिशा,
सेवा की दिशा।
जी, उनका मानना है कि प्रेम ही नारी का जीवन है, जैसे कोई अमृत का झरना जो संसार को शांति और शीतलता देता है। और इसी प्रेम रूपी कल्पवृक्ष की छाया में व्यक्ति को, समाज को सच्ची शांति मिलती है, आत्मतृप्ति मिलती है।
अच्छा, तो मतलब नारी का जो प्रेम है और उसका जो ये पोषण करने वाला स्वभाव है, वही उसे कामधेनु और कल्पवृक्ष जैसा बनाता है समाज के लिए।
सार तो यही है। बिल्कुल, वो सृष्टि में व्यवस्था लाती है, अनुशासन, मर्यादा सिखाती है। ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं है, ऋषियों ने भी तो माना है, उसे धरती की कामधेनु कहा है।
धरती की कामधेनु?
हाँ, ये समाज और मानवता के संतुलन के लिए बहुत जरूरी तत्व है।
पर अध्याय के आखिर में एक चेतावनी जैसी भी बात है
जी।
वो लिखती हैं, उसे काटने की नहीं जीवन देने की बात सोची जाए, अन्यथा मानवता अपने पथ से भटक कर न उबरने वाले गर्त में गिर सकती है। इसका क्या अर्थ निकालें?
ये बहुत गंभीर सवाल उठाता है आज के समय के लिए। वंदनीय माता जी शायद ये संकेत दे रही हैं कि अगर इस नारी रूपी कल्प वृक्ष को सींचा नहीं गया, उसका पोषण नहीं हुआ,
मतलब उसे सम्मान और सही स्थान नहीं मिला,
हाँ, या उसके गुणों को पहचाना नहीं गया, तो मानवता का संतुलन बिगड़ सकता है। और ये सिर्फ नारी की बात नहीं, ये पूरी मानवता के भविष्य की बात है। एक बहुत गहरा विचार है ये।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, वंदनीय माता जी के अनुसार नारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
वो एक सनातन शक्ति है, पोषण देने वाली, प्रेम देने वाली एक दिव्य ऊर्जा, जो कामधेनु और कल्पवृक्ष की तरह समाज को थामे हुए है।
सही कहा, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनकी सहन शक्ति, यही वो अमृत है जो संसार को सींचता है, जैसा उन्होंने बताया है।
तो इस चर्चा के बाद शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि वंदनीय माता जी ने नारी का जो ये कामधेनु और कल्प वृक्ष वाला स्वरूप बताया है, उसे हम आज के जीवन में अपने समाज में कैसे देख सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है आज, इस पर सोचना जरूरी होगा।
जी बिल्कुल, ये विचारणीय प्रश्न है।